किताब छपी है उसमें से हम देख रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 12। कल हमने देखा था कि धर्म जो होता है वह अपने आत्मा के आधार से ही होता है और शुभ राग जो है उससे कभी भी धर्म नहीं होता। वो वहां तक उन्होंने बताया है जो राग है वह तो अधर्म है, इतना तो हमने कल देखा था। आज हम देख रहे हैं पेज नंबर 12 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। यदि व्यवहार को धर्म कहोगे तो केवल ज्ञान प्रकट होने में फिर क्या बाधा रही। व्यवहार को उपचार से धर्म कहा है। देखो उन्होंने ऐसा पूछा है कि अगर आप धर्म व्यवहार को ही धर्म कहेंगे तो व्यवहार को धर्म कहने से तो यह जीव शुभ राग तो करता ही है, तो फिर उसको केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो रहा है। तो व्यवहार को उपचार से धर्म कहा है, वह कभी स्वभाव की एकाग्रता से दूर होती है। व्यवहार को उपचार से धर्म कहा है, वह कमी स्वभाव की एकाग्रता से दूर होती है। यदि निश्चय व्यवहार दोनों ही धर्म हो तो फिर क्या कमी रही। इसलिए व्यवहार तो मात्र कहने के लिए धर्म है। निश्चय स्वभाव से धर्म होता है, व्यवहार से धर्म नहीं होता। यह अनेकांत विद्या है। उन्होंने
कमी की बात है ना, देखो यदि निश्चय और व्यवहार दोनों ही धर्म हो तो कुछ कमी ही नहीं रही। निश्चय भी हो रहा है और व्यवहार भी चल रहा है वहाँ, तो दोनों ही है, तो अभी कुछ और क्या करना रहा। तो ये व्यवहार है वो कमी है, और वो कमी जितना निश्चय में यानी जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतनी वो कमी कमती कमती हो जाएगी।
कमी का मतलब न्यूनता,
न्यूनता
ख्याल में। उन्होंने समस्त पक्ष का परिग्रह छोड़ा है, हमारा यह पक्ष है ऐसी बात नहीं है। हमारी बात मानने वाले मित्र हैं और नहीं मानने वाले शत्रु हैं, ऐसे पक्ष को छोड़ा है। यानी दूसरी भाषा में कहो तो इनमें वितरकता या समता भाव है, किसी को इष्ट या अनिष्ट, किसी को मित्र या शत्रु, या किसी को अनुकूल प्रतिकूल, ऐसे मानने वाली जो वृत्तियां थी वो उनमें नहीं रही। क्या कहा, हमारी बात मानने वाले मित्र है और नहीं मानने वाले शत्रु है, ऐसे पक्ष को छोड़ा है, इस प्रकार अत्यंत मध्यस्थ है। विवेक उपरांत चारित्र में अस्थिरता छूटी है। विवेक यानी जो वास्तव में सम्यक ज्ञान जो प्राप्त हुआ है वही विवेक है, वही सोपर भेद विज्ञान है। सोपर भेद विज्ञान है, और इसके बाद चारित्र में अस्थिरता छूटी यानी चारित्र में स्थिरता बढ़ी है। तो नेगेटिव से बात की ना, अस्थिरता छूटी है, अस्थिरता छूटी है का मतलब अस्थिरता बढ़ी है, क्योंकि मुनि योग की जो स्थिरता होती है वह तो अत्यंत अधिक प्रमाण में होती है चौथे गुण स्थान के तुलना में, और वह ऐसा अतीन्द्रिय आनंद है कि वह मुनि दशा का जीव तो वारंवार एक अंतर मुहूर्त में हजारों बार अंतरंग में जाने की कोशिश करते हैं। क्यों कि वो जो अतीन्द्रिय आनंद का जो रस, उसका जो उन्होंने रसपान किया है, स्वाद लिया है, उसके लिए वो अधिक अधिक क्यों ना अपने को मिले, इसलिए उसका प्रयत्न करते हैं। फिर भी उनकी जो स्थिरता है वो अन्य के मतलब चौथे पांचवें गुण स्थान के कंपैरिजन में अधिक है। क्यों कि उनके तीन कषाय चोपड़ी का अभाव भी वहां है ना, हेलो। और हमें तो अभी क्या है, चारों कषाय चोपड़ी की मौजूदगी है, और हम चाहते हैं कि हमको उनकी जैसे स्थिरता हो जाए। ऐसे नहीं होगी, क्योंकि ये अनंतानुबंधी है ना, उसमें तो कोई भी चीज देखो तो उसके प्रति अपने को कोई ना कोई उसमें राग द्वेष उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं। तो इसने कहा विवेक उपरांत चारित्र में अस्थिरता छूटी है। चारित्र दशा की बात करते हैं, और वितराग द्वारा कहा गया मार्ग जिन्हें प्रकट हुआ है, ऐसे उन श्री कुंदकुंदाचार्य देव का बहुमान करते हैं। यहाँ तो अभी हमने देखा है कि कुंदकुंदाचार्य भगवान के बारे में अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, और वो उनका वर्णन ऐसा करते हैं कि वो आत्मिक स्थिरता उनको अधिक प्रमाण में है। श्री कुंदकुंदाचार्य देव अनेकांत विद्या को प्राप्त हुए हैं और अत्यंत मध्यस्थ है। श्री कुंदकुंदाचार्य देव गाथा कहते हैं, वे कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, यह श्री अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए ऐसी प्रतिज्ञा की है। मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए कैसी प्रतिज्ञा की है वह बताते हैं। अब जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट है, ऐसे श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव को अतिशय विवेक ज्योति प्रकट हुई है। उन्हें एकांत पक्ष मानने का आग्रह छूट गया है। प्रत्येक वस्तु स्वरूप से है और पररूप नहीं, ऐसी अनेकांत विद्या को प्राप्त किया है। ये किसकी बात कर रहे हैं, विश्व के प्रत्येक द्रव्य की। वस्तु प्रत्येक वस्तु यानी प्रत्येक द्रव्य, तो प्रत्येक वस्तु यानी प्रत्येक द्रव्य स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। यानी हमने कल या परसों देखा था कि मेरी अस्थि मेरे में है, मैं स्वरूप से हूँ, और मेरी नास्ति पर में है यानी मैं पर रूप से नहीं हूँ। ये जो बात है, ऐसी अनेकांत जो विद्या है, वह विद्या कुंद कुंद आचार्य देव उसमें पारंगत थे, उनको अवगत थी अच्छी तरह से। जो आत्मा द्रव्य से नित्य है, वही वही यानी वही द्रव्य पर्याय से अनित्य है, किंतु एकांत नित्य ही है अथवा एकांत अनित्य ही है, ऐसा आग्रह छूट गया है। उन्होंने भगवान परमेश्वर की अनेकांत विद्या को प्राप्त किया है। आत्मा स्वरूप से है, पर रूप नहीं है, द्रव्य द्रव्य रूप से है, गुण रूप नहीं है, एक समय की पर्याय अपने स्वपने है, परपने नहीं, ऐसी अनेकांत विद्या को प्राप्त हुए हैं। सत्य को जैसा है वैसा कहते हैं, असत्य का उत्थापन यानी निषेध करते हैं, शत्रु मित्र का पक्ष छूट गया है, ये दिगंबर मेरे मित्र है और अन्य मेरे शत्रु है, ऐसा पक्षपात छूट गया है, अतः अत्यंत मध्यस्थ है। मध्यस्थ यानी समता वृत्ति सहित है, साम्य भाव है उन्हें। ऐसे उन कुंद कुंद आचार्य देव ने इन गाथाओं को बनाया है। देखो बात तो ऐसी है ना, जब हम जैन दर्शन का अभ्यास शुरू करते हैं तो पहले मन में ये हम ठान लेते हैं कि हम जो ये बात सुनने जा रहे हैं तो ये सुनाने वाले कौन है, किन्होंने ये बात बताई है। तो जब हम उनका स्वरूप पहचानते हैं, स्वरूप समझते हैं कि वे तो वीतरागी है और वे तो सर्वज्ञ है और हित का ही उपदेश देने वाले हैं, तब जब हमें उनके स्वरूप का पता लगता है तो उन्होंने जो कोई बात कही हो उसमें विश्वास रखने में कोई भय नहीं रहता कि ऐसा हम ये करूं कि नहीं, ये ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, ऐसी बात मन में नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी हम जो गाथाएं पढ़ने जा रहे हैं तो किन्होंने लिखी है, तो कुंद कुंद आचार्य ने लिखी है। तो कुंद कुंद आचार्य देव कैसे हैं कि माध्यस्थ वृत्ति वाले हैं, अनेकांत विद्या को प्राप्त है, इस तरह उनका यहाँ स्वरूप बताकर, उनकी क्वालिफिकेशन बताकर। अभी मान लीजिए किसी को हार्ट का ऑपरेशन करना हो तो हम क्या देखते हैं, फला 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 ये कर वो क्या डॉक्टर साहब अमेरिका रिटर्न या ऐसा कुछ कुछ FRCS ये 10-15 जब उसके पुछड़ू देखते हैं फिर हाँ इसमें कुछ शायद हो सकता है कि ये जानता हो, फिर भी और 2-4 जनों उनसे पूछेंगे कैसे कैसे, फिर उनके पास जाते हैं। वैसे हम जिनको पढ़ने जा रहे हैं या हम जिनके टीका लिख रहे हैं, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि वे आचार्य कैसे कि जिन्होंने ये गाथाएं लिखी है, तो उनका वर्णन यहाँ चल रहा है। क्या कहा, ऐसे उन कुंद कुंद आचार्य देव ने इन गाथाओं को बनाया है। ये सारी बात बताने का प्रयोजन क्या है कि इस प्रयोजन के साथ जब हम पढ़ते हैं कि वो हो ऐसे वितरागी दिगंबर संतों ने ये बात लिखी है तो निश्चित रूप से मेरे फायदे की होनी चाहिए, ऐसा समझकर हम जब अधिक चाव से पढ़ते हैं तो उनकी बात अपने को सही रूप से काल में आ जाती है। क्या कहते हैं, आत्मा को मोक्ष दशा हिततम है। क्या कहा, देखो तुम मेरे शरण आ जाओ तो तुम्हारे हित की बात है, या तुम फला फला एक तुम्हारे झेड़ को शरण जाओ तो तुम्हारा काम होगा, ऐसा बता रहे। ये तो कह रहे हैं आत्मा को, यानी किसके आत्मा को, तो मेरे आत्मा को। तो आप लोग ऐसा नहीं समझना कि मेरी बात हो रही है, स्वयं प्रत्येक को मेरे आत्मा को, जैसे अपने तरफ ध्यान जाना चाहिए, तो क्या कहते हैं वो कौन क्या हिततम है, हिततम यानी मोस्ट हितरूप, क्या कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, हिततरतम भाव कहते हैं ना, तो वो हित सबसे अधिक हितकर ऐसा कौन है, तो कहते हैं मोक्ष दशा। तो ये मोक्ष दशा किसको हिततम है, तो प्रत्येक आत्मा को। तो हमें अगर यह मोक्ष दशा प्राप्त करनी है, अबंध दशा प्राप्त करनी है, जो हिततम है वो कैसे प्राप्त होगी, तो इसकी बात तो हम पहले कर लिए थे कि जो अपने में जो अबंध स्वभाव है अपना, उस अबंध स्वभाव के ओर अगर हम ध्यान देते हैं, उसी में कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, उसी में उपयोग लगाते हैं, तो वह दशा उत्पन्न हुए बिना रहेगी। तो ये प्रत्येक आत्मा में ऐसी दशा उत्पन्न हो, ऐसी उसकी कैपेसिटी है। तो कहते आत्मा को मोक्ष दशा हिततम है, लेकिन पुण्य लक्ष्मी और भोग हितकर नहीं। क्या कहा कि पुण्य, हम तो सोचते हैं ना कि इतना इतना कुछ ऐसा हम क्रिया करें तो हमें पुण्य होगा और हम यहाँ से स्वर्ग में चले जाएंगे वगैरह वगैरह, या अभी यहाँ हम रहे हैं इस भाव में तो हमें अधिक से अधिक पैसा मिले, धन लक्ष्मी कुटुंब सब ऐसे अच्छे फेवरेबल मिले, तो वो भी कहते वो भी हितकर नहीं है। अब कहते आगे जो पंचेंद्र के जो भोग है वे भी ये हितकर नहीं है, तो हितकर क्या है, तो कहते मोक्ष दशा। तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थ में मोक्ष आत्मा को हिततम है, क्योंकि इन्होंने दिया ना ये धर्म के जगह पुण्य लेना, अर्थ की जगह लक्ष्मी लेना और काम की जगह भोग, ख्याल में तो यहाँ कंपैरिजन किए उन्होंने, तो अपने को लगता है भाई हिततम या अमुक अमुक है, पुण्य लक्ष्मी और भोग हितकर नहीं, यहाँ लिखते और ये नया क्या टॉपिक चालू किया कि तथा धर्म अर्थ काम की बात कहाँ है, हाँ है उसी में है, और यह जो मोक्ष जो है ये सबसे हिततम है ऐसा कहते हैं। किसी पुरुष का प्रयोजन धर्म यानी पुण्य है, किसी का प्रयोजन अर्थ है, किसी का प्रयोजन काम है, काम यानी भोग पंचेंद्रिय के भोग, किसी का प्रयोजन मोक्ष है, लक्ष्मी मिलना अथवा नहीं मिलना यह पुण्य के अधीन है, मैं लक्ष्मी को मिला हूँ पुण्य करूं और भोग मिलाऊं, ये तीनों ही पुरुषार्थ विपरीत है, और मोक्ष करूं ऐसा स्व तन्मुखता का पुरुषार्थ सही है। अब वास्तव में देखा जाए तो यह पुरुषार्थ जो है वह तो जीव द्रव्य के वीर्य गुण की पर्याय है, अब यह गुण जो है वो जीव के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहेगा, तो जो पुरुषार्थ होगा वो अपने स्वद्रव्य में रहेगा या बाहर के द्रव्य में एप्लीकेबल होगा, तो हम पैसा कमाने का जो सोचते हैं उसमें पुरुषार्थ करने की चेष्टा करते हैं, तो कहां से वो होने वाला है, जो अभी कोई हमें पैसा मिल रहा है या अपने पास उपलब्ध है वो तो बिल्कुल समझना कि हमने पूर्व में किए हुए पुण्य का फल है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि अभी मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मैं व्यापार अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मैं नौकरी में ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ इसलिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो उस जीव की वो मान्यता बिल्कुल बराबर नहीं। ये बात बचने में समझने में बहुत तकलीफ देने वाली है, यानी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती है। देखो पहले तो ये समझना इच्छा उत्पन्न होना वो क्या है, दुखदायक है, पाप है पहले तो, और वो भी पैसा कमाने की इच्छा, परिग्रह हम जोड़ना चाहते हैं ना एक तरह से, क्यों पैसा क्यों चाहिए, तो हमें ये चाहिए वो चाहिए अन्य अन्य सारी बातें चाहिए, और वो पैसा मिले न मिले लेकिन वो चाहिए वाले जो परिणाम है वो इटसेल्फ परिग्रह है, और उसमें फिर मोह भाव तो है ही, इसके बिना तो कोई चाहे नहीं। तब क्या कह रहे हैं कि जो पाप परिणाम है वो पाप करके पुण्य का उदय होवे। अभी पैसा मिलता है तो पुण्य के कारण मिलता है, और हम यहां कैसी इच्छा कर रहे हैं कि नहीं मुझको और पैसा मिले और मिले और मिले, तो पैसा मिले या मिलाने की जो हमें विधि है या चेष्टा अपनी हो रही है प्रयत्न हो रहे हैं वो तो सारे पाप परिणाम है, और पाप परिणाम करने से पुण्य का फल मिले। तो ये जो कहते हैं कि भाई हमने प्रयत्न किया इसलिए हमें पैसा मिला, हम सुबह से लेकर शाम तक दिन भर बाहर में इतना काम करते हैं मजूरी करते हैं और हमें पैसा नहीं मिले ऐसा नहीं होगा। तो वास्तव में तो ऐसा कहते हैं कि ये जो आपको जो पैसा प्राप्त हो रहा है या हुआ है या होएगा वो तो तुम्हारे पुण्य के अधीन है, ये कहना भी उपचार है। जय बिन देखो जीव यहां इच्छा करता है पैसा आता है क्यों आता है पुण्य के उदय से, तो पुण्य है कारमान वर्गणा पैसा है आहार वर्गणा, तो दो वर्गणाओं में अत्यंत अभाव है, तो एक दूसरे से होता है ये बात भी सही नहीं है, ख्याल रहा है लेकिन समझाए कैसे बताए कैसे है? तो ये इस तरह से ही बताया जाएगा कि ये इसके कारण से ये होता है, ख्याल रहा है। वो तो पैसे का जैसा परिणमन होना है वो भी तो पुद्गल द्रव्य है ना, तो वो पुद्गल द्रव्य का जो परिणमन जब होना है होगा, लेकिन जब अपने संयोग में आता है तो हम उसके एकदम ये हो जाते हैं कि नहीं मेरा मेरा मेरा। अब यहां जो कह रहे हैं ये तीनों जो विपरीत पुरुषार्थ है यानी धर्मेच यानी धर्म अर्थ और काम, इसमें जीव का कुछ संबंध ही नहीं है, क्योंकि विभाव करना यानी यहां काम बताया ना यानी पांच पंचेंद्रिय विषयों के जो भोग भोगना इसको काम में उन्होंने समेट दिया, यानी विभाव करना यह जीव का स्वभाव थोड़ी है, वो बात जीव को जैव ठीक नहीं बैठते, क्योंकि लौकिक में हमने कभी मोक्ष की बात ना सोची है ना सुनी है, हमें तो इन तीनों में अपना पुरुषार्थ लगाने की हमें बहुत इच्छा होती है और प्रयत्न भी होते हैं। तो यहां तो हम अगर डिटेल में देखेंगे तो ये तो सारा पुरुषार्थ यानी जो पैसा है ये वीर गुण की विपरीत विभाव पर्याय चल रही है, और स्वभाव में स्थिरता करना यह उसका स्वभाव है, और वह वीर गुण की सच्ची मतलब सम्यक पुरुषार्थ की परिणति है। अब क्या कहते देखो, मैं लक्ष्मी को मिलाऊं पुण्य करूं और भोग मिलाऊं, ये तीनों ही पुरुषार्थ विपरीत है, क्योंकि इसके जीव के हाथ की बात ही नहीं है। और क्या कहते हैं, और मोक्ष करूं ऐसा स्व सन्मुखता का पुरुषार्थ ही सही है, धर्मी जीव का प्रयोजन मोक्ष का है, बीच में पुण्य आता है लक्ष्मी का संयोग होता है, और निचली दशा में अल्प विषय वासना होती है किंतु धर्मी को उसका प्रयोजन नहीं होता। ये थोड़ी सी समझने जैसी बात है, ये निचली दशा में यानी चौथे पांचवें गुण स्थान में इस जीव को सम्यक दर्शन हुआ है, ये अन्य से जुदा पना उसको ख्याल में आया है, फिर भी कहते हैं कि बीच में पुण्य आ जाता है, पहले उसने जो कुछ पहले पुण्य किया था उसका उदय के कारण यहाँ हमें कुछ न कुछ उपलब्धि होती है, और अभी कमजोरी है स्वरूप में एकाग्रता हो नहीं रही है इसलिए अल्प विषय वासना भी वहां दिखाई देती है, लेकिन क्या कह रहे हैं, जो धर्मी होगा धर्मी यानी जो सम्यक दृष्टि होगा सम्यक ज्ञानी होगा उसका वह प्रयोजन नहीं है, यानी पंचेंद्रिय विषयों के भोग में ले ऐसा उनको कभी अंतर से लगता ही नहीं है, लेकिन भूख तो लगती है खाना तो खाएंगे, लेकिन पहले जैसा मिथ्यात्व अवस्था में जो खाने के लिए जीते थे वैसी अवस्था नहीं रहेगी, इसलिए कहते हैं किंतु धर्मी को उनका यानी किसका के बीच में जो पुण्य आया है विषय वासना के जो परिणाम हो रहे हैं वो भी उनका प्रयोजन नहीं है। आत्मा की परम पवित्र दशा ही श्रेष्ठ है। परम पवित्र दशा में स्वभाव परिणमन जो है वीर्य गुण का सात्विक है, यह अत्यंत हिततम है, उत्कृष्ट हित स्वरूप है। कुंदकुंदाचार्य यथानुभूत मार्ग के प्रणेता है। क्या कहते हैं? यथानुभूत यानी अनुभूति करके, जैसा स्वर का स्वरूप है यथा वैसा अनुभव करके, यानी खाली हमारे जैसा बोलने का नहीं है। हम तो यहाँ पढ़ते हैं और आपको बता दें, वहां तो उन्होंने उसका अनुभव किया, स्वयं अनुभव किया और फिर बाद में बताया ऐसा। तो क्या कहा? कुंदकुंदाचार्य यथानुभूत मार्ग के प्रणेता है। ये मार्ग जो बता रहे हैं उसका उन्होंने प्रथम में अनुभव किया है और फिर बता रहे हमें मुनिपना का अनुभव है। सर्वज्ञ देव द्वारा कहे गए छठवे गुणस्थान का मुनिपना कैसा होता है, उस मुनिपने के प्रणेता हम खड़े हैं। पैसे वाले अपने लक्ष्मी का अनुभव कहते हैं किंतु उसमें पैसा नहीं मिलता। क्या कहा? अभी आप में से बहुत लोग करोड़पति हो, अभी लखपति तो क्या झोपड़ी पट्टी वाला भी होता है, तो करोड़पति का अनुभव कैसा है? करोड़पति का अनुभव तो हमको मालूम है, हम बता तो नहीं सकते, लेकिन वो अनुभव तो है हमें। पहले अभी समझ लो, कोई ऐसा हो सकता है कि पहले बहुत गरीब था और अभी अमीर हो गया, तो अभी कैसा लगता है? और एकदम उसको जो लगता है वो नहीं बता पाता है, लेकिन कुछ न कुछ उसको विशेष रूप से लगता है। वैसा ये कहते हैं पैसे वाले अपने लक्ष्मी का अनुभव कहते हैं किंतु उसमें पैसा नहीं मिलता, उससे पैसा नहीं मिलता, यानी जो अनुभव है उससे पैसा तो नहीं मिलता। अज्ञानी अभिमान करता है, जैसे बंदरों की टोली में बड़े बंदर को पगड़ी बांधी जाती है वह बंदर का पटेल यानी मुखिया कहलाता है। यदि पगड़ी नहीं बांधी जाए तो वह मंडप को तोड़ डालता है। देखो बंदर जो होता है ना उसको बराबर क्या बोलते हैं, उसका उसको जरा मस्का लगाए बिना नहीं लगाएंगे, उसको जरा बड़प्पन नहीं देंगे तो जहाँ वो लोग बैठे रहते वो मोड़ तोड़ कर दे, तोड़ फोड़ कर देता है, और उसको जरा मुखिया बना दिया तो ये शांति से रहता है। वैसा ये अज्ञानी, अगर आगे पहले तो सिद्धांत दिया अपना दृष्टांत दिया, क्या कहा कि जैसे बंदरों की टोली में बड़े बंदर को पगड़ी बांधी जाती है वह बंदर का पटेल यानी मुखिया कहलाता है, यदि पगड़ी नहीं बांधी जाए तो वह मंडप को तोड़ डालता है। वैसे ही अज्ञानी पैसे का अभिमान करता है, मान की इच्छा करता है। यहाँ कहते हैं कि धर्मी को मोक्ष का प्रयोजन है। बीच में पुण्य आ जाए वह जुदी बात है, पुण्य में लक्ष्मी में काम भोग में किंचित भी हित नहीं है, मोक्ष में ही हित है, वह परम पवित्र दशा ही हिततम है। अब यहाँ यही कहते हैं कि अज्ञानी को भी बीच बीच में ऐसा पगड़ी बांधने का दिल होता है, नहीं तो अभी बहुत लोग कहते हैं ना कि आप लोग को दो टाइम खाना हम खिलाते हैं या खाते हो आप, इसलिए आप ये सारी धर्म परम की बात करते हो, आत्मा पितमा की बात करते हो, लेकिन आपको दो दिन भूखा रहना पड़े फिर देखो मुंह से क्या बात निकलती है। ऐसा जो जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं हो अध्यात्म में तो वो ऐसी बात करते हैं, यानी जो चालू रूटीन है उससे उसके कोई दूसरा ही दिमाग चलता है। उसी तरह ये बंदर भी ऐसा ही है कि जो उसको थोड़ा बहुत अब ये दिए नहीं, हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दिए, रिस्पांस नहीं दिए, रिस्पेक्ट नहीं दिए तो गर्मी करता है। लेकिन ऐसी बात सम्यक दृष्टि के नहीं होती है, यानी गर्मी ज्ञानी जीव को नहीं होती, वो तो जानता है कि ये जो पुण्य है या ये तो ऐसा है, ये सारे भोग के विषय है वो मेरे लिए हितकर नहीं है, मुझे तो सिर्फ मोक्ष ही कारक है। आप कुछ कहना चाहते हैं?
हाँ देखो, यहाँ तो पहले पेज तो कहा ना, मुनिपने का हमें अनुभव है। मैंने स्वयं कुंदकुंडाचार्य कहते हैं, अमृत चंद्राचार्य ने भी कहा था एक जगह कि यहाँ ये हम यहाँ खड़े हैं मोक्ष मार्ग के प्रणेता, मैंने स्वयं भावलिंगी मुनि है, ये स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं। उसके आगे लिखा है जो पैसे वाला जो लक्ष्मी का अनुभव कहता है, यानी अपने पास बहुत लक्ष्मी है वो दुनिया को कहता है, वो क्यों कहता है? अपना अभिमान यानी मान कषाय का पोषण करने के लिए। परंतु यहाँ जो मुनि अपने अनुभव की बात कहते हैं वो उनका प्रयोजन वो नहीं है। उनका तो प्रयोजन है लोगों को भी वैसे अनुभव कराने का और ये मार्ग का उपदेश देना, ये उनका प्रयोजन है। इसलिए दोनों की तुलना की है कि अज्ञानी है वो अभिमान के लिए बताता है और मान की इच्छा करता है, और जो धर्मी जीव है उनका तो प्रयोजन एकमात्र मोक्ष का है, फिर भी अन्य लोगों को उपदेश देने का उनको ऐसा सहज भाव आ जाता है।
अपने स्वरूप का अनुभव हुआ तो भगवान प्रसन्न हुए ऐसा कहने में आता है। ये तो लौकिक अपेक्षा से कहा गया, भगवान पंच परमेश्वर की प्रसन्नता से, अरिहंत और सिद्ध की प्रसन्नता से मोक्ष लक्ष्मी प्रकट होती है, आत्मा चिदानंद है उसकी प्रसन्नता हुई, वह प्रसन्न हुआ, अर्थात पंच परमेश्वर के ऊपर प्रसन्नता का आरोप आता है। केवली भगवान प्रसन्न हो अर्थात कि शुद्ध चिदानंद हूँ, अमृत पिंड हूँ, इसमें एकाग्र शांति द्वारा प्रसन्नता जगी है अर्थात परमेश्वर की कृपा है, ऐसा मुनिराज निमित्त का कथन कहते हैं। ये अभी थोड़ा सा आपको समझ में आया कि नहीं? तो देखो, इस तरह हम समझ सकते हैं कि हमें यह मार्ग मिला है, तो मिला है तो अपने स्वयं की योग्यता से, लेकिन हम तो बार बार ऐसा ही कहते हैं तो कहना भी चाहिए कि हमें यह मार्ग तो कामजी स्वामी के द्वारा ही मिला है। समय तो वो तो हम निमित्त वे थे और हम वो निमित्त को ही इम्पोर्टेंस दे के बात बोलते हैं। जैसे यहाँ कोई जीव अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाता है और उसको मार्ग मिलता है तो ये पंच परमेश्वरों के ऊपर आरोप आता है कि भाई इनका हमने सुना, इनके मार्ग पर हम चले, इन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए हमें ये मार्ग मिला। तो ऐसा निमित्त की प्रधानता से ऐसा कथन है, लेकिन वो कथन में कोई दोष नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं कि अपनी आत्मा की प्रसन्नता जागी। तो अपनी आत्मा की प्रसन्नता जागी यानी क्या, कि अपने स्वयं को अनुभव हुआ तो भगवान प्रसन्न हुए, यहाँ पांच परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। वैसे तो जो स्वयं वितराग है वो किस पे प्रसन्न होंगे और किस पे रुष्ट होंगे, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा कहेंगे और कहने में कोई दोष नहीं है। हम भी तो ऐसा बोलते हैं ना, हम तो भगवान महावीर की संतान है। अब वो होके तो 2500 वर्ष हो गया, अभी काय की संतान। लेकिन ऐसा भावना वेग से कहने में आता है और कहे तो हम समझते भी है कि हम उनके फॉलोअर हैं, उनके अनुयायी हैं और उन्हीं के मार्ग पर चलना चाहते हैं और उन जैसे दशा भी प्राप्त करना चाहते हैं। ये इसके पीछे कहने का मतलब होता है। तो यहाँ पर भी ऐसी बात कह रहे हैं कि ये ऊपर से खींच रही है ना, केवली भगवान प्रसन्न हो अर्थात कि शुद्ध चिंतन अर्थात मैं सिद्ध सिदानंद हूँ, अमृत पिंड हूँ, इसमें एकाग्र शांति द्वारा प्रसन्नता जगी है, अर्थात की क्या मेरे समझ में नहीं आया? ये की रस्व तो चाहिए, अर्थात सिद्ध चिदानंद हूँ, अमृत पिंड हूँ, इसमें एकाग्र शांति द्वारा प्रसन्नता जगी, यानी मेरे में एकाग्रता होने से मेरे में एकाग्रता होने से शांति हुई और उसके द्वारा मेरे में प्रसन्नता जगी, अर्थात परमेश की कृपा है, ऐसा मुनिराज निमित्त का कथन करते हैं। क्या बात ख्याल में आ गई? प्रवचन सार में ज्ञान प्रधान कथन है, इसलिए हित अपने में है ऐसा समझकर अपने में ही स्थिरता करता हूँ, अर्थात पंच परमेश्वर के ऊपर आरोप आता होता आता है। मोक्ष प्रकट होने में पंच परमेश्वर निमित्त होते हैं, किंतु कुदेवादि निमित्त नहीं होते। दूसरी तरह से कहा जाए तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु मोक्ष मार्ग में निमित्त है, किंतु कुदेव कुगुरु निमित्त नहीं हो सकते। ये बीच में गुरु का जो है ना, वो कहाँ हटा देंगे तो सही हिंदी होगा, नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा किंतु कुदेव कुगुरु का निमित्त नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर है ना, निमित्त है तो निमित्त नहीं हो सकते, ये सही लगता है। ऐसा भी बताना है, देखो जब जब कोई कार्य होता है तो उसको उचित निमित्त तो होगा ही होगा। अभी हम कहीं किसी के घर में जाए तो साहब आप क्या लेंगे? चाय लेंगे, कॉफी लेंगे? बोलते नहीं साहब, हम दूध लेते हैं। अच्छा, कितनी चम्मच शक्कर? कितनी चम्मच? ऐसा ही पूछेंगे, शक्कर वक्कर तो नहीं पूछेंगे, कितनी चम्मच? तो आप कहेंगे तीन, तो वो समझता है कि इसको मीठा लगता है, तो उसने क्या कहे कि शक्कर डालने के बदले नमक डाल देंगे, तो क्या होगा? निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता है ना, ऐसा बताए। लेकिन जब जब कार्य होता है, मीठापन का कार्य होगा, वहाँ निमित्त भी उचित ही होगा, निमित्त भले कार्य में नहीं करता है। दूध तो मीठा हो गया ना, कहा दूध नहीं मीठा हुआ, वहाँ के जो परिणाम परमाणु है उसका, क्योंकि ये पुद्गल का स्वभाव क्या है, पुद यानी जुड़ना और गल यानी बिखरना, तो उसका ऐसा बंध जो हुआ था वो बिखर के जो कुछ हो गया उसके अन्य तरह से उसके परमाणु परिणमित हुए। लेकिन वहाँ जो कार्य होना है, मन लो मीठा बनाना है, तो नमक डालने से मीठा पना नहीं होगा, तो उसको भी जब मीठा बनमन होना है तो वहाँ शक्कर ही डाली जाएगी। तो यहाँ इन शॉर्ट ऐसा कहते हैं कि जैसा कार्य है उसको वैसा उचित निमित्त भी होगा। तो यहाँ जो उचित कार्य हुआ है, कौन सा? सम्यक दर्शन रूपी महान कार्य हुआ है, अपूर्व कार्य हुआ है, तो वहाँ निमित्त भी उचित ही होंगे। वो कौन होंगे? सच्चे देवगुरु शास्त्र। तो वहाँ कुदेव कुगुरु शास्त्र से किसी को निमित्त रूप वो है और सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा तीन काल में नहीं बनेगा। क्या कहते? देखो दूसरी तरह से कहा जाए तो अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु मोक्ष मार्ग में निमित्त है, किंतु कुदेव कुगुरु निमित्त नहीं हो सकते, ऐसा भी बताना है। भगवान तो वितराग है, उनको प्रसन्नता का राग नहीं होता, स्वयं में स्वयं के चैतन्य की कृपा वर्तती है, इसलिए पंच परमेश्वर की निमित्त रूप से कृपा कही जाती है। ये कही जाती है यानी उपचार से ऐसा कहने में आता है। देखो यहाँ पांचों को भगवान परमेश्वर कहा है, नमोलोए सौवत्साहूणम, इस पद में अन्य मत के वैरागी तथा जैन के सभी साधु आ जाते हैं, ऐसा कहकर कोई वक्ता जैनों की उदारता को मनवाना चाहते हैं। नहीं समझ रहे? बहुत समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया। नहीं, भावना बिन थोड़ा सा प्रश्नांकित चिन्ह दिखा चेहरे पर, इसलिए पूछा। देखो कई लोग ऐसा मानते हैं, तुम जो हो ना नैरोमाइंडेड हो, नैरोमाइंडेड हम तो, तुम संकुचित वृत्ति के हो, हम तो चौड़ी छाती वाले हैं। क्यों कहा? अरे हम सबको समा डालते हैं, और हमारी घर की बात नहीं है। किसने जाने का तुम्हें? नमो लोए, यानी विश्व के सारे, लोक के सारे साधुओं को नमस्कार करें, सबको साफ होना। इसमें लिखा है कि हम करते हैं, तुम बहुत कंजर्वेटिव हो। तो कहते हैं देखो क्या कहा, नमोलो ये सवोसा उन्नीस पद में अन्य मत के वैरागी, ये वैरागी गलत शब्द है, बैरागी है बराबर लिखा हुआ, बैरागी, ये वैरागी तो कम से कम कहीं वैराग्य तो आया हुआ रहता है, ये बैरागी तो उनका तो अभी जाने दे। तथा जैन के सभी साधु आ जाते हैं, ऐसा कहकर कोई वक्ता जैनों की उदारता को मनवाना चाहते हैं, इसे सुनकर अज्ञानी को अच्छा लगता है। किंतु भाई जब श्वेतांबर को भी जैन मुनि पद नहीं है, तो अन्य मत के साधु पंच परमेश्वरी में कहां से आएंगे? अच्छा हो गया सुशील में नहीं है। क्योंकि भाई साधु का स्वरूप भी मालूम नहीं है ना, कल ही तो बात हुई थी क्या, जो परिग्रह सहित है उनको निष्परिग्रह कैसा कहेंगे, निर्ग्रंथ कैसा कहेंगे? निर्ग्रंथ का अर्थ समझते हो? निर्ग्रंथ बोलो हा? बराबर आप जानते हो अश्रुभन, हाँ यानी किसी भी बात के बारे में गांठ नहीं, गांठ नहीं यानी मोह नहीं है। हम देखो अभी पहले के जमाने में, आजकल तो अलग बात है, क्योंकि उस जमाने की बात, जब सब स्त्रियां साड़ी पहनती थी तब क्या होता था कि भाई कोई बात ख्याल में नहीं रखे, वैसे छेड़े को गांठ बांध के रखती, तो कैसा तो काय का यही भूल जाते थे, वो अलग बात है। लेकिन गांड बांधने नहीं का कहीं ना कहीं अटकाव रहना, हम बोलते हैं ना हमें हमारे कुछ नहीं बाकी कुछ नहीं, लेकिन मेरे बच्चे के प्रति तो मुझे बहुत मोह, तो वो गांठ है उसके लिए, वो गांठ है बांध के रखा उसने, किसी को पति के प्रति, किसी को पत्नी के प्रति, किसी को अन्य के प्रति, जो कुछ है वो गांठ है, किसी को पैसे के प्रति, अभी किसकी क्या है? ये तो हमने 24 परिग्रह में सबको संभाल लिया हमने। यहाँ क्या कहते हैं, जो जैसे जीव के जिनके किसी भी प्रकार की गांठ नहीं है, किसी भी प्रकार में मोह उनका नहीं है, ऐसे जीव को निर्ग्रंथ कहा है। जो निष्परिग्रही है वही निर्ग्रंथ हो सकते हैं। थोड़ा सा खुलासेवार बोलता हूँ कि देखो अभी कोई मुनिराज हो और उनके साथ में वस्त्र हो, तो एक जोड़ी वस्त्र है मान लो, एक जोड़ी जा, तुम्हारे जैसे हमारे पास 50-50 जोड़ी नहीं, खाली एक जोड़ी, तो क्या करें? तो एक दिन पहने, दो दिन पहने, 10 दिन पहने, तो फिर उसको धोना तो पड़ेगा कि नहीं? तो सादा पानी से धोए तो स्वच्छ नहीं निकलता है, तो अपनी इज्जत भी जाती है, क्या ऐसा गंदा पहनता है, तो उसको एरियल या और जो कुछ होगा 555 कुछ ना कुछ साबुन तो लगे कि नहीं? तो उनके पास तो कोई पैसा नहीं है, और वो तो याचना भी नहीं करते किसके पास, ख्याल में? तो फिर पैसा करें और एक कपड़ा पहने और दूसरा सुखावे, अरे वो कोई कोई ले न जाए तो उसके तरफ ध्यान देवे या अपने स्वरूप में एकाग्र रहे, ख्याल में है? तो अभी जो नग्न है उनका क्या ले जाना है और क्या रखना है, उनका उपयोग कहीं अन्यत्र भटकने के कोई चांस है क्या? देखो हर बात में, और ये जो मुनि होते हैं वे तो अहिंसा महाव्रत के पालन करते हैं, यानी उनके न त्रस जीवों की हिंसा उनसे होती है और न के स्थावर जीवों की। तो कपड़ा धोने के लिए जल वापरना पड़ेगा नहीं? अरे मुनिराज जो होते हैं वो अस्नान व्रती होते हैं, तो खुद स्नान नहीं करे और कपड़ा धोके बैठे, क्योंकि नौकर चाकर तो है नहीं जिनसे धुलवा दे। ये सारी बातें गड़बड़ी हो जाती है जब हमें गुरु का स्वरूप पता नहीं। और यहाँ लिखा ना, क्या लिखा देखो, जब श्वेतांबर को भी जैन मुनि पद नहीं है। देखो देखो, ये अपनी बात अपनी चला रहे। अरे चला नहीं रहे, जो वस्तु का स्वरूप है उसको समझा रहे कि किसी से द्वेष बुद्धि नहीं है कि भाई इनको हम हटा दें और हम भी ऊपर चढ़े, ऐसी बात नहीं है। जो है उसी को ठीक तरह से समझा रहे। एक में ऐसे अनेक बातों में हम देख सकते हैं कि जो निर्ग्रंथ और निष्प्रग्रही इन्हीं को मुनि कहने में आ सकता है। कोई साथ में बात रखे, वस्त्र पात्र रखे, तो पात्र भी सफा करना पड़ेगा, वो हमेशा संभालना पड़ेगा, कभी टूट फूट जाए तो फिर समझ लो किसी ख्याल में नहीं आया, नजर में नहीं आया, कोई उनके क्या बोलते हैं श्रावक श्राविकाएं आते हैं उनके ध्यान में नहीं आवे तो हमें तो अंदर से सतत वही बात कल्पना वही चलेगी ना। तो इसलिए कहते हैं ऐसे ये जो निर्ग्रंथ जो मुनि है, निष्परिग्रही मुनि है, वही मुनिराज कहने में आते हैं या मुनि कहने में आते हैं। इसलिए यहाँ उन्होंने कहा कि श्वेतांबर को भी जैन मुनि पद नहीं है तो फिर अन्य मत के साधु पंच परमेश्वरी में कहाँ से आएंगे। क्योंकि ऊपर के कुछ वो चौड़े छाती वाले होते हैं ना, वो बोलते सबको एक साथ लेंगे हम, सब साधु दिखाए ना, तो वो साधु नहीं, जो साधु योग्य ऐसे जो सब साधु है और एक टाइम के नहीं, त्रिकालवर्ती जो साधु है उनकी बात है। मुनि परमेश्वर कैसे होते हैं, जिन्हें आत्मा के भान पूर्वक तीन कषाय नाश हुई है, वे नग्न और निश्चय रत्नत्रय सहित होते हैं। ऐसे महान मुनि आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आश्रय करके मैं यह प्रवचन सार कहूंगा, ऐसे साधु होते हैं। मोक्ष दशा उपादेय है, किंतु निमित्त और व्यवहार उपादेय नहीं है। तथा कैसी है मोक्ष लक्ष्मी, हीरा मानक की लक्ष्मी सच्ची नहीं। क्या कहते हैं ये हीरा क्या होता है मालूम है आप, जानते हैं हीरा? हाँ पत्थर, स्टोन स्टोन, आप क्या बोलते हैं, डायमंड। हाँ बराबर, हाँ पृथ्वी का है। एक मिनट एक मिनट, जरा उनको बोलने दो, मैं सुनू तो सही, वो पहले आज से बोलते हैं। हाँ हाँ पृथ्वी काय है वह, यानी पृथ्वी जीव जो होगा, हाँ पृथ्वी कायिक जीव जो होगा उसकी वह काया है, यानी क्या है शरीर है, यानी क्या है वह पृथ्वी कायिक जीव का मुर्दा है अभी, वो कलेवर है उसका, और ये कलेवर के ऊपर हम दूसरा कलेवर डालते हैं, सॉरी कलेवर डालते हैं। हाँ, अपने को क्लेवर मानते हैं। अच्छा और हम उसमें अपने को बड़प्पन कर मानते हैं क्या, ये पहले से ये भी जड़ है, यह भी मुर्दा ही है। हाँ, एक मुर्दे के ऊपर दूसरे मुर्दे को मढ़ाते हैं, ये जो क्या हीरा माणक मोती सोना, बराबर शादी में कितना सोना दिया, अरे मेरे मम्मी ने तो 30 किलो दिया, क्या बात है, मेरे मम्मी ने 300 किलो दिया, तो पहला तो नीचे दम देते हैं मैंने आपको मालूम नहीं, तो पहना के नहीं देते, साथ में देते। अब क्या मैं देखा हूँ इसलिए बोलता हूँ। हाँ एक पार्टी है साउथ ना अफ्रीका की, उसकी शादी यहाँ बम्बई में हुई थी, उसकी बात मैं कह रहा हूँ। तो हम क्या मानते हैं यार 300 किलो उठाएगा कैसा, मर जाएगा, क्या ऐसा मतलब उससे बड़ापन मानना। मैं क्या बताता हूँ कि ये जो है ये पर पदार्थों से अपना मोटापन, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि ये है क्या असल में। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हमारा शोभा जायक होगा कि नहीं, हाँ हम शोभा किसे मानते हैं, अन्य पदार्थों के चल में। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, हीरा माणक की लक्ष्मी सच्ची नहीं, शरणभूत नहीं, यानी उसका आश्रय लेने योग्य नहीं है, अपितु चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई लक्ष्मी ही सच्ची है और अविनाशी है। ये तो बात सुबह हो गई है, फिर भी दोबारा कहता हूँ, अभी हम दुबई गए थे ना, तो वहाँ सोने का सुख सुख लेने का वो जैसा अपना बाजार रहता है ना, वैसे वहाँ सोने बस सोना ही सोना मिलता है, दूसरा कुछ मिलता ही नहीं वो मार्केट में, यानी ऐसे कांच के शोकेस रहते हैं और उस कांच के शोकेस में पूरे गहने गहने जो हमने कभी नहीं देखे ऐसे टाइप के। तो हमको देखना तो नहीं था, लेकिन हमको जरा काम है, हमको हम जिनके घर में उतरे थे वो हमको लेके जाते थे, फिर तो देखो देखो देखो। तो फिर दूसरा दिन प्रवचन में उज्ज्वला बोली, ये सोने के सुख में सुख नहीं है, काय का सुख है, जब हमको पता लगता है कि ये कोई वृत्ति काय हम अपने काय पे चढ़ाते हैं, ऐसा जब हमें पता लगेगा। अभी देखो कितना अपना मन होता है, ये एक मुर्गी के ऊपर दूसरे मुर्गी को लादना, अगर अपने को असलियत मालूम पड़ जाए तो उसके लिए जो अपने अंदर से जो हाय 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 आकुलता है निकल जाएंगे, निकलनी ही चाहिए, वस्तु स्वरूप ख्याल में आ जाए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई लक्ष्मी ही सच्ची है और वो कैसी है, अविनाशी है, मोक्ष लक्ष्मी ही, मोक्ष लक्ष्मी एक ही ग्रहण करने योग्य है, देव शास्त्र गुरु का राग 28 मुलगुण पालन का राग आता है, किंतु परमार्थ से वह उपादेय नहीं है, परमार्थ से यानी सही सही निश्चय से वह उपादेय नहीं है। आचार्य कहते हैं कि खेद है कि व्यवहार आए बिना नहीं रहता, यहाँ व्यवहार का अर्थ शुभ राग लेना है। मुनि को 28 ऊपर भी श हुए वो स करना, दोनों जगह स कर देना, मुनि को 28 मूल गुण के पालन का राग आता है किंतु वह उपादेय नहीं है, अपितु मोक्ष लक्ष्मी उपादेय है, निमित्त और व्यवहार तो उपादेय नहीं है किंतु मोक्ष मार्ग की पर्याय भी उपादेय नहीं है। क्या कहा, क्योंकि वह भी एक पर्याय है ना, दशा है, तो वह भी उपादेय नहीं क्योंकि पर्याय है ना, एक समय मात्र है, तो उपादेय कौन है, किसका आश्रय ले हम, तो कहते पर्याय का आश्रय लेने जाओ तो पर्याय तो एक समय में छूट जाएगी, तो काय का आश्रय, तो अपना जो मोक्ष स्वरूप जो स्व का स्वरूप है, स्वभाव है, वो तो नित्य कायम टिकने वाला ऐसा जो ध्रुव सामान्य ऐसा जो तू स्वयं है उसका आश्रय लेगा तो मोक्ष रूपी पर्याय उत्पन्न हुए बिना रहेगी नहीं। इसलिए कहा कि किंतु मोक्ष मार्ग की पर्याय भी उपादेय नहीं है, पंच परमेश्वरी को निमित्त सिद्ध किया किंतु उपादेय तो पूर्ण शुद्ध परिणति रूप मोक्ष लक्ष्मी ही है। वर्तमान तीर्थ के अर्थात साधु अर्जिका श्रावक और श्राविका के नायक महावीर स्वामी हैं, यहाँ उनसे लेकर सभी तीर्थंकर भगवान को नमस्कार किया है, वर्तमान शासन में भगवान महावीर की निकटता है इसलिए उनको पहले याद किया, इस प्रकार पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया है, अनंत तीर्थंकरों में महावीर तीर्थंकर देव को पहले स्मरण किया है। तीर्थंकर सिद्ध आचार्य उपाध्याय और मुनि इन सभी में तीर्थंकर भगवान महावीर को पहले लिया है, श्री कुंदकुंदा आचार्य से पहले के जो आचार्य उपाध्याय साधु हुए हैं उनको वंदन करते हैं, देह से नमस्कार करते हैं, वह प्रणमन है वचन से स्तुति करते हैं वह वंदन है। नमस्कार में दोनों आ जाते हैं, दोनों यानी क्या, देह से नमस्कार और वचन से स्तुति। ये जब नमस्कार कहते हैं तो उसमें दोनों बातें समाहित है। पूर्ववर्ती आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि मैं उन्हें देह से नमन करता हूँ और वाणी से उनका स्मरण करता हूँ, इस तरह वे सर्व प्रकार से सम्मान करते हैं। इस प्रकार से कुंदकुंदाचार्य देव पंचपरमेश्वरी को नमन करके वंदन करते हैं। कुंदकुंदाचार्य स्वयं की निर्मल पर्याय में वर्त रहे हैं, किंतु व्यवहार और निमित्त का आश्रय नहीं है तथा उनको विकल्प के समय मोक्ष मार्ग वर्तता है। कि मोक्ष मार्ग एक शब्द कर देना, बहुत अलग अलग लिखा है
ऊपर भी, वो नमन करके वंदन करते उसमें न का पाए मोड़ रहे हैं, वो पूरा न चाहिए, नमन करते हैं,
देह से नमन करते लगे ना, न का खोड़ो थे ना, खोड़ो नहीं गए तथा उनको विकल्प के समय मोक्ष मार्ग वर्तता है। आनंद कंद भगवान आत्मा की प्रतीति, उसका ज्ञान और रमणता में वर्तते हुए श्री कुंदकुंदाचार्य प्रतिज्ञा करते हैं, सर्व प्रकार से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हैं, इतना ज्ञान प्रदान कथन है। वास्तव में तो उन्हें स्वद्रव्य का आश्रय है, साथ में वर्तमान पर्याय में मोक्ष मार्ग वर्तता है। ये मोक्ष मार्ग फिर इकट्ठा कर देंगे, इसलिए उसका आश्रय करते हुए प्रवचन सार कहना चाहते हैं। समय सार के में दृष्टि प्रदान कथन है और यहाँ ज्ञान प्रदान कथन है, इसलिए यहाँ द्रव्य और पर्याय दोनों की बात आएगी। क्योंकि ज्ञान में द्रव्य और पर्याय दोनों जाने जाते हैं, लेकिन श्रद्धा में तो द्रव्य को ही स्वीकार करना है। यहाँ मोक्ष को उपाधेय बने निश्चित करते हैं, मोक्ष लक्ष्मी वर्तमान में प्रकट नहीं है इसलिए उसे उपाधेय कहा है, और वर्तमान में मोक्ष मार्ग वर्तता है इसलिए उसका आश्रय करते हुए ऐसा कहा है। वास्तव में तो द्रव्य का आश्रय है, किंतु ज्ञान जानता है कि वर्तमान निर्मल पर्याय में स्वयं वर्त रहा है, निमित्त और व्यवहार का आश्रय नहीं है, यह बताने के लिए मोक्ष मार्ग का आश्रय कहने में आया है। अभी मोक्ष मार्ग यानी ये जो संवर निर्ग्रह जो है ना, मतलब जो पर्याय रूप जो वर्त दशा है वह उपाधेय है, किसकी अपेक्षा से, कि पर पदार्थ और निमित्त की आश्रय नहीं है इसलिए इसका आश्रय बताया। लेकिन वास्तव में आश्रय किसका होना चाहिए, अपने स्व का। नहीं बात कर रहे नहीं आए तो कल देखेंगे, टाइम हो गया ना, कल नहीं परसों, आज 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 पूछ सकते हैं।
जावाणी के जानते तुझे लोकालो, तो वाणी मस्त कणमो सदा दे तो।
बोलो जिनवानी माता की।